ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय अवड़ा दीदी का हम एक हाथ से सभी वेलकम करेंगे। अवड़ा दीदी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि आप 8 वर्ष की आयु से ही आपको मेडिटेशन का अनुभव होने लग गया था। आप 14 वर्ष की आयु में आते आते आपने बाबा के जैसे अनुभव में खो गए, परमात्मा के अनुभव में, और आप पिछले 37 वर्षों से राजयोग का अनुभव आपके पास है। आपका जन्म केन्या में हुआ, शिक्षा इंग्लैंड में आपने ली और सर्विस कनाडा में की है। कई देशों में भी आपने ईश्वरीय सेवाएं जाकर की है। भारत में भी जब भी आते हैं तो अलग अलग राज्यों में जाकर सेवाएं प्रदान करते हैं। आप के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है कि समर्पित टीचर्स बहनों को आप मदद भी करते हो, प्रोत्साहित करते रहते हो, और आप ट्रेनिंग कहें सेल्फ मैन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फैसिलिटेटर भी आप हैं। आपने कनाडा, टर्की, मुआना, बहरीन, कुवैत इत्यादि देशों को में सेवाएं की है। उस सेवाओं को आप संभालते भी हैं, उन सेंटरों को, और आपके अंदर स्टडी के प्रति गहरी रुचि है। आपके अंदर आपने इनर पीस, हार्मनी इत्यादि विषयों पर व्याख्यान दिए हैं। आप यज्ञ के विदेश के एक अच्छे स्पीकर हैं। आपने अंग्रेजी में भी कई किताबें लिखी है, जैसे रिलेशनशिप चेंज, सेल्फ एम्पावरमेंट, कई वर्कशॉप इत्यादि आपने कई किताबें भी लिखी हुई है। आपकी सामाजिक सेवाओं को देखते हुए नवंबर 2014 में आपको ओमैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया। ऐसे महान हस्ती को हमारे बीच पाकर के एक हाथ से सभी वेलकम करेंगे दीदी जी का। अभी हम सुनेंगे दीदी जी से, आदरणीय अरुणा दीदी से, आज का विषय अंतर्मुखी सदा सुखी।
ओम शांति। वो तो शरीर का इंट्रोडक्शन था ना और आत्मा का इंट्रोडक्शन साइलेंस की शक्ति से। ये विषय मैंने चुना क्योंकि एंड दिसंबर से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना संकल्प शक्ति को हम बचाए। स्टॉप थॉट्स, कुछ भी बात हो रही है तो कितना जल्दी हम उसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं। संकल्प शक्ति को हम बचत करें, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना कि जितना खर्च होगा ना, तो जिस समय हमको यूज करना है उस समय नहीं होगा, वो पावर नहीं होगा। तो इसलिए जितना हो सके, 2-3 हफ्ते पहले जयंती बहन से ये पूछा गया था, जयंती दीदी लंदन की, कि बाबा ने कहा ना कि साइलेंट शक्ति को इकट्ठा करो, तो उसका मतलब क्या? तो जयंती दीदी ने कहा कि जब भी समय मिले बस शांति में बैठ जाओ। क्योंकि मैं भी पूरा नहीं समझ रही थी शांति की शक्ति इकट्ठा करना मना किया। तो वास्तव में सिंपल बात है, बस जब समय मिले जहां भी हो बस शांत चुप। लेकिन सिर्फ मुख नहीं, लेकिन आत्मा। कोई और विचार नहीं, कोई और चाहना नहीं, बिल्कुल संतुष्ट। बाबा ने कहा ना कल का, हमें समझती हूँ कि हमारा ख्याल खान पान में कितना जाता है, ये खाना है, वो खाना है, फिर खाने के लिए फिर शॉपिंग करना पड़ता है, और फिर कहीं स्पेशल दुकानों में जाना पड़ता है कुछ खास चीज चाहिए तो फिर पकाने में कितना टाइम जाता है। तो शरीर को कितना ध्यान दे रहे हैं उतना ही आत्मा को दे रहे हैं। तो दिसंबर मास से मैं अभ्यास कर रही हूं कि वैसे भी हमारे सेंटर में सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता और लंच ही करते हैं। जिन्हों को चाहिए कुछ वो खा लेते हैं अपना। वैसे तो हम सभी बस लंच ब्रेकफास्ट और लंच ही करते हैं। शाम का कुछ नहीं चलता है किचन में। शाम का तपस्या या सेवा या कुछ पर्सनल उन्नति। तो पहले मैं मेरा अनुभव से शुरू करूंगी कि आप मानेंगे नहीं लेकिन मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत बाह्यमुखी थी। बहुत क्रांतिकारी सोच थे, बहुत फेमिनिस्ट थे और जो कहना था वो बोल देती थी, खास मेरी टीन्स में। और हमेशा मेरा हक के लिए मैं लड़ती थी ये गवर्नमेंट के साथ या वैसे तो बड़ी हुई लंदन में, लेकिन मतलब जहां भी लंदन कनाडा यू नो जो भी मेरा हक है वो मैं जरूर लेंगी। फिर धीरे धीरे ज्ञान लेते लेते ये समझ आई कि वो तो सब हम झगड़ा करके ले सकते हैं, जो चाहिए सो ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शक्ति किसमें है? शक्ति है अपने को काबू में रखना, शक्ति है संकल्पों को काबू में रखना। जो चाहे सो बोल सकते हैं, लेकिन फिर उसका परिणाम भी होता है ना, कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है। जैसे आप कहते हो ना, क्या कहते हैं, मुंह फट। तो धीरे धीरे जैसे ज्ञान लेती गई, जैसे बड़ी होती गई, तो ये समझ में आता गया कि जितना हो सके अंदर जाना है, अंदर देखना है। इंग्लिश में तो कहते हैं ना इंट्रोवर्जन, इंट्रोविजन, अंदर देखो। इंट्रो माना अंदर, विजन देखो, अंदर का साक्षात्कार। और लोग क्या करते हैं दुनिया में, घर में आए, टीवी ऑन कर दिया, रेडियो ऑन कर दिया, कि कुछ म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दी। ब्राह्मिन्स भी करते हैं ना, ब्राह्मिन्स भी आते हैं और कुछ यूट्यूब क्लास लगा देते हैं कि चलती रहे। पूरी तो नहीं सुनते हैं ना हम, लेकिन ये आदत पड़ गई है कि कुछ आवाज चाहिए ही चाहिए, बाहर का जो माहौल है वो चाहिए, अंदर चाहिए, ताकि हमको लगे कि हाँ मैं जी रही हूं, कुछ हो रहा है। मैं छोटी थी तभी मेरे को साइलेंस भी अच्छा नहीं लगता था। मैं तो बचपन से ज्ञान में हूं लेकिन मेरे को साइलेंस डे नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि कई बार मैं देखती थी कि कहीं साइलेंस में बैठते हैं लेकिन फिर कभी ना कभी उस दिन या तो दूसरे दिन इतना क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो मैं सोचती थी साइलेंस का क्या फायदा। और ऐसे अचानक शांत हो जाना वो भी सही नहीं था ना, एक दिन इतना बोलो फिर दूसरे दिन शांत चुप, ये भी ठीक नहीं है ना। ये तो एक्सट्रीम्स हुआ ना, एक दिन ये एक दिन वो। तो उसमें भी देयर इज नो सेल्फ कंट्रोल, उसमें बस अपने को कह दिया चुप रहना है आज बस, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, दुनिया में रहते हुए भी, काम काज करते हुए भी, उस समय हम न्यारा रह सकते हैं, हम चुप रह सकते हैं, अपनी वाणी को बांध सकते हैं, जब भी चाहिए तभी। नॉट सिर्फ एक ऑर्डर दे दिया सुबह और आज नहीं बोलना है, वो तो इजी है। जैसे खान पान हम कहते हैं ना अपने को, बस आज फास्टिंग कर रहे, तो किचन में ही नहीं जाते तो इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन खाना सामने होए और हम कहे कि नहीं चाहिए, उसमें ज्यादा शक्ति आती है ना। तो बीच बीच में साइलेंस शक्ति चाहिए, बीच बीच में डिटैचमेंट चाहिए। तो हाँ, धीरे धीरे जैसे बाबा के साथ भी अच्छा कनेक्शन होता गया, मतलब प्यार बढ़ता गया, तो मेरे को वो ज्यादा पसंद आने लगा कि नहीं, बाबा के साथ बैठना है, बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ बातें करनी है। मेरा जन्म हुआ एक समझो बड़े परिवार में, तो हम सात भाई बहन हैं, फिर हमारा हमारा मामा, हमारी मासी, सब मतलब एक साथ माना घर बहुत नजदीक, एक दूसरे के घर में, तो बहुत जैसे बड़ा परिवार था। फिर उसमें से मैं लंदन सेंटर में आई, तो लंदन सेंटर तो बहुत बड़ा परिवार, 200-300 के बीच में रहना रोज सुबह शाम, और मैं दादी जयंती बहन को मदद करती थी, तो कईयों के साथ कुछ ना कुछ कारोबार चलता था। फिर वहां से मैं कनाडा गई, तो वहां हम तीन बहने सेंटर में बस, और 2-3 स्टूडेंट्स। और वैसे भी आपको पता है कनाडा कितना बड़ा है, कनाडा में उस समय तो इतने स्टूडेंट्स भी नहीं थे, पूरे कनाडा में 20-30 स्टूडेंट्स होंगे, और क्या थर्ड फोर्थ बिगेस्ट देश इन द वर्ल्ड आई थिंक। फिर वहां से बाबा देखो कैसे तैयारी कर रहे आत्मा की, फिर कनाडा से मैं टर्की आई, तो टर्की में बस मैं एक सेंटर में और चार भाई बहन, और वो भी नए नए, उन्हों को सब कुछ सिखाना सब धारणा सिखाना, खान पान की मर्यादा सिखाना। तो पूरे देश में मैं ही अकेली। तो पहले पहले तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम जब बड़े परिवार से आते हैं और पूरा हमारा टाइम ऐसे ही बीत जाता है ना, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, लेकिन यहां तो अपने साथ रहना पड़ता है। तो मैं तीन बार जाती थी पैदल, वो लोग आते थे मुरली के लिए, तो फिर मुरली क्लास के बाद में जाती थी, और सेंटर वो दरिया किनारे के पास था, पास माना थोड़ा बस 5 मिनट चलो और ये दरिया किनारा। तो सुबह में जाती थी, फिर आके नाश्ता करती थी, फिर मतलब थोड़ी पढ़ाई, मतलब कुछ पढ़ती थी, फिर 12-1 बजे फिर पैदल जाती थी, फिर कुछ लंच करो, और शाम को कोई आते नहीं थे। तो टर्की मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड था, जिसमें मैं समझती हूं मैंने अपने साथ वो कनेक्शन डेवलप किया, जहां मैं अपने साथ रहने लगी, लाइक आई लाइक्ड माय ओन कंपनी, अपना संग पसंद होता गया। और तभी तो हम बहुत नजदीक थे ना दादी जयंती बहन से, तो ऐसे फोन उठा के, फोन भी उस समय वो नहीं था ना व्हाट्सएप, और तभी तो स्काइप भी नहीं था, तो 1-2 मिनट बात कर सकते हो फिर रख देना होता है, नहीं तो बहुत खर्चा आता। लेकिन उस समय फोन करके हेलो कर देते थे, दादी दादी आज आई एम बोर्ड, राइट, बोरिंग फीलिंग आ रही है दादी, आज अकेलापन है दादी आज, तो दादी कुछ ना कुछ कहती थी, खुश कर देती थी, फिर बस एक मिनट के बाद हम अपने साथ, दादी का संग कितना समय, 2 मिनट, राइट, फिर बैक टू द सेल्फ। फिर एक दिन दादी ने मेरे को कहा, आप लिखती क्यों नहीं हो, आप लिखो ना। तो वो था बीज, दादी के वो कहने की वजह से मैंने लिखत शुरू की और फिर कई किताबें लिखी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी ऐसे लगता है कि ये तो बहुत जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन है, अपने को अच्छा नहीं लगता है, अपने साथ अच्छा नहीं लगता है ये, और ये सब देशों में मैं गई हूं ना, वहां हम भाषा भी नहीं बोल सकते, जैसे इस्तांबुल में तो टर्किश चलता है। फिर एक साल के बाद मैंने सीखना शुरू किया, तो लगभग 60-70% मैं बोल सकती हूँ टर्किश, लेकिन पहले तो किसी के साथ बात भी ना कर सको, बस में, वो फेरी में, शॉपिंग जाओ आपको लूट लेते हैं, टैक्सी ड्राइवर लूट लेते हैं। फिर बहरीन में भी अरबिक, कुवैत में भी अरबिक, लेकिन वो टर्की था ट्रेनिंग ग्राउंड, जिसमें मैं अपने साथ बहुत, क्या कहूं, कॉन्फिडेंट होती गई। फिर क्या होता था, हर सैटरडे एक सेमिनार होता था 5 बजे, तो सुबह मुरली क्लास थी, जो आते थे 5-7 लोग, फिर उनको नाश्ता खिलाती थी, फिर ये लोग सफाई करके जाते थे, फिर 10 बजे से मैं बैठ जाती थी वो सेमिनार की तैयारी करने के लिए। ये था 90s की बात, 96-97 की बात। तो वो भी मेरे को बहुत पसंद आने लगा, बाबा की पढ़ाई, जर्निंग करना, मंथन करना, जैसे बाबा कहते ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो एक तरफ तो मेरे को ऐसे धक्का मार के जैसे वो परिस्थिति आई, मैं नहीं चाहती हूं कि आपको भी ऐसे परिस्थिति आए, लेकिन आएंगी तो भी बहुत अच्छा होगा, बहुत सीखने को मिलेगा, अपने को वो मजबूत करेगा। और कई कई प्रैक्टिसेस भी, फिर मैं बताती हूँ, जब मैं कायरो गई इजिप्ट, तो वहां भी 2-3 स्टूडेंट्स ही है, पॉपुलेशन है लगभग 80 मिलियन, लेकिन बाबा के बच्चे थोड़े ही है, और वो भी बहुत फैले हुए, ऐसे नहीं वहां ही आप रहते हो, वहां ही नहीं, 1 घंटा दूर, 2 घंटा दूर, 4 घंटा दूर, लेकिन वहां भी इतना अच्छा अनुभव बाबा के साथ। मैं अकेली हूं और सब कुछ बाबा के साथ, चलो बाबा हम खाते हैं, चलो बाबा क्या बनाएंगे, बाबा इसको क्या जवाब दूं मैं, कोई और है ही नहीं ना बात करने के लिए, तो कहां जाएंगे हम, बाबा के पास जाएंगे ना। तो इतना अच्छा अनुभव कराया बाबा ने कि सचमुच मैं अकेली नहीं हूं, बाबा साथ है। तो यही मैं कह रही हूं ना कि वर्स्ट को बेस्ट बनाना, कुछ खराब, ऐसी समझो कुछ खराब सिचुएशन है, उसको बेस्ट बनाना सिर्फ बाबा का ही काम है। और इससे हम पावरफुल बनते जाते हैं। हम फिर दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। अभी कहां भी हूं मैं, भले सब है भी, लेकिन उस पे भी हम डिपेंडेंट नहीं है कि कंपनी चाहिए, कि कोई चाहिए, कोई आधार चाहिए, नहीं। क्योंकि यह अनुभव हो गया ना कि बाबा है मेरे साथ, बाबा इज माई कंपेनियन। और फिर फायदा क्या है अंतर्मुखी का? आपको तो पता है ना, टाइटल से भी पता है ना कि अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। तो पहला फायदा तो ये है कि हम ज्यादा हिसाब किताब नहीं बनाते। हम क्यों दखल करें सब बातों में? हमारा ये काम है क्या? दादी भी कई बार कहती थी, क्योंकि हम कई कुमारियां थी ना सेंटर में, तो दादी एक को पूछती थी तो दूसरी जवाब देती थी। तो दादी कहती है, ये आपका काम नहीं है ना, मैं किसको पूछ रही हूं, आप क्यों दखल कर रहे हो इसमें? एक बार क्या है कि दादी ने पूछा कि ये बेन कहां है। ऐसे दोपहर का वक्त था तो किसी ने कहा वो सोती होंगी, ऐसे ही अनुमान लगा दिया, वो सोती होंगी। फिर बाद में दादी को पता पड़ा, नहीं ये तो बाहर गई थी। तो दादी ने डांटा उसको। दादी ने कहा ऐसे क्यों अनुमान लगाते हो, जब आपको पता नहीं है, ये भी ठीक नहीं है ना, ये भी हिसाब बनता है। वो सोचती है वो सोती रहती है, इसमें सोई होंगी। तो ऐसी भी हम दृष्टि क्यों रखें किसी के लिए, जब हमको पता नहीं है तो हम क्यों बोले। फिर जब दादी आती थी ग्लोबल हाउस से, तो मैं वहां इंतजार करती थी बाबा भवन में। दादी ऊपर जाती थी, साड़ी निकालती थी, तो मैं साड़ी लेने की कोशिश करती थी, तो दादी मेरे हाथ से छीन लेती थी। दादी कहती है ये आपका काम नहीं है। फिर हंसा बहन को देती थी। मतलब छोटी छोटी बात तो, लेकिन हम क्यों, जो आपका काम है वो करो ना, और वो ठीक करो ना। तो जब हम अंतर्मुखी होंगे ना, तो पहला तो ये मैंने कहा ना, कनेक्शन बाबा के साथ और सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी स्थिति का बहुत बहुत अच्छा अनुभव होगा। क्योंकि क्या है, बाहर एनर्जी नहीं जा रही है ना, जितना हमारी एनर्जी बाहर जाएंगी ना, उतनी कम अंदर जाएंगी। एनर्जी इज एनर्जी, समझो 100% एनर्जी है आपके पास, 50% बाहर गई तो कितनी बची, 50% ना। तो फिर अभी वो कहां खर्च करेंगे? और बाहर से क्या फायदा है, बाहर से क्या प्राप्तियां है? आपने देखा ने अभी जो परिचय दिया, मैं तो पूरी दुनिया घूमी हूं। हांगकांग भी रही थी 3 मास, दादी ने भेजा था। न्यूयॉर्क भी रही थी 1 साल मोहिनी दीदी के साथ। लेकिन सब खाली है, सब खाली है। सबको क्या चाहिए, सुख और शांति। जब मैं हांगकांग में थी, तभी बहुत अमीर वो जो चाइनीज टाइकून्स है ना, उनकी बीबी आती थी, बहुत अमीर। और फिर अपनी जो बोट है ना, वो चाइनीज बिजनेसमैन वो शाम को यूज करते थे बिजनेस के लिए, बिजनेस डिनर्स। तो दिन में ये माता ये यूज करती थी, तो हमको ले जाती थी, फिर अपनी कहानियां सुनाती थी, दुख भरी कहानियां। तो सब कुछ होने के बाद भी नो शांति, नो सुख, नो कंटेंटमेंट, संतुष्टि नहीं। तो ये तो मैंने पहले से ही समझ लिया कि दुनिया में कुछ नहीं पड़ा है। ओके, अभी दुनिया में कुछ नहीं पड़ा है तो कहाँ है, कहाँ जाना है अभी? अपने अंदर, या अपने अंदर और ऊपर। इसलिए फिर मैं लिखती हूं, मैं औरों के लिए नहीं लिखती हूं, मैं अपने लिए लिखती हूं। क्योंकि जैसे मैं लिखती हूं, मैं जर्नी करती हूं, डीप रियलाइजेशन आती है, समझ आती है, समझ गहरी होती जाती है, तो चेंज आता है, फिर स्वमान बढ़ता है। हम मंथन न करें तो हमारा सोर्स ऑफ चेंज, तो यही पॉइंट है ना, जो गीत में सुना ना, योगी जीवन है प्यारा। जब एक बार हमको उसका रस बैठ जाता है ना योग करने का, तो वो बहुत मीठा प्यारा अनुभव है। जब मैं छोटी थी और मधुबन पांडव भवन आती थी, तभी मैं कोशिश करती थी 8 घंटा योग बैठे हुए 8 घंटा। तो जब भी मैं क्रॉस करती थी बाबा का कमरा, 15 मिनट बैठना जरूरी है। कुछ काम के लिए समझो डाइनिंग जाते हैं उस तरफ, तो उस समय तो पांडव भवन ही था ना, तो किसी न किसी कारण से वो बाबा का कमरा क्रॉस करना पड़ता था, लेकिन I have to go and sit 15 minutes. ऐसे ऐसे 8 घंटा, 8 घंटे का चार्ट बनाती थी मैं। तो यही बात है कि हम जितना अंदर जाएंगे, तो वो कैसे अंदर जाएंगे उसकी चर्चा करते हैं। पहले तो मैं कहूंगी कि जितना हो सके अमृत वेले के बाद फिर से न सो, फिर से वापस पलंग पे नहीं जाना चाहिए। कोशिश करो, क्योंकि वही सुबह का समय है जिसमें सारा वातावरण सब कुछ हमको सहयोग दे रहा है। हमको पावरफुल बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना। तो दिन का सबसे पावरफुल समय कौन सा है? सुबह ना। तो जिसने सोया उसने खोया। और मेरा बेस्ट वर्किंग टाइम तो सुबह ही है, सुबह माना 12-1 बजे तक। सुबह से अमृत वेले के बाद से 12-1 बजे तक मैं जास्ती कॉन्सेंट्रेशन, थिंकिंग, राइटिंग, वो सब मतलब अच्छा चलता है। ओके, तो 4 से 8 तो अपना समय, राइट? लेकिन उसमें भी मैं कहूंगी चलो मुरली पढ़ो या सुनो या, लेकिन साथ साथ आप थोड़ा मंथन करो, क्योंकि कईयों को नींद भी आ जाती है ना, कहते हैं क्या करें हम सुबह सुबह। तो आप लिखो कैसी भी आपकी राइटिंग। पहले तो मेरे को अपना राइटिंग भी पसंद नहीं था, ऐसे लिखती थी मतलब मेरा राइटिंग भी नहीं पसंद था। लेकिन ये सब बातें हमको अपनी जो कमी कमजोरी है वो सब हमको स्वीकार करना है। ये सब अंतर्मुखी बन के ही हम कर सकते हैं, बाहर मुखी होके नहीं कर सकते। तो राइटिंग और क्या है कि वैसे तो दुनिया में कहते हैं 3 पेज, 3 A4 पेज, लेकिन आप जितना लिख सको, लेकिन वो फिर से पढ़ना नहीं है, बस लिख के पेज टर्न कर दो, बस फिर दूसरे दिन दूसरा क्लीन पेज। तो इससे क्या होता है कि मन में जो ऐसे बातें चलती है ना, ऊपर ऊपर सुपरफ्लुअस बातें सब वो हम सब पेपर पे निकाल देते हैं। तो आप थोड़े समय के बाद देखेंगे कि जो अंदर की जो वो क्रिएटिविटी है वो डिवेलप होती जाएंगी और आपका मंथन भी बहुत अच्छा गहरा डीप क्रिएटिव आप भी यू नो क्या बोलते हैं चंबक अचंबित हो जाएंगे कि अच्छा मेरा मंथन ऐसा है। और क्या है कि रियलाइजेशन क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम रियलाइज ना करें ना तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। बाहर वाले मतलब लोग जो दुनिया में रहते हैं उनको भी पता है सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, शराब पीना अच्छा नहीं है, मीट मांस खाना अच्छा नहीं है, दे नो राइट, जानते हैं ना, लेकिन अब तक रियलाइजेशन शक्ति नहीं आई है ना कि इट्स नॉट गुड फॉर मी, इट्स नॉट गुड यस बट इट्स नॉट गुड फॉर मी। वो जब डॉक्टर कहेंगे तब छोड़ेंगे ना, नहीं पर मैं क्यों अपना रियलाइजेशन शक्ति से वो ना छोड़ू। सो यहां भी हाँ जर्निंग इज गुड, मन को मैं कहती हूँ इट्स लाइक मेंटल एक्सरसाइजेस, मन को आज ये पॉइंट दो सोचने के लिए, ये 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 अनुभव करो बाबा के साथ, वहां उड़ो यहां उड़ो, एक्सरसाइज द माइंड द मसल्स ऑफ द माइंड। क्या है हम हमको अपनी जो अंदर की दुनिया है ना उससे प्यार हो जाना चाहिए, इन लव विथ माई इनर वर्ल्ड, हमको वो फिक्स करना है ना, हमारी जो अंदर की जो दुनिया है वो फिक्स करना है ना हमको। बाहर की जैसे मैंने कहा पहले तो मैं बाहर की दुनिया फिक्स करने में लगी थी, लेकिन वो तो पता है कलयुग है ना और ही बिगड़ती जाएंगी, और समझो वो फिक्स कर भी दिया और मैंने अपने को फिक्स नहीं किया तो मैं कहां जाऊंगी। हाँ दुनिया फिक्स हो गई लेकिन मेरा संस्कार मेरा एटीट्यूड सब कुछ वो ठीक नहीं हुआ तो मैं कहां जाऊंगी। तो पहले तो अपने को फिक्स करना है, अपने को ठीक करना है। तो सुबह 4 से 8 मैं ऐसे नहीं कहूंगी बात नहीं करो, वो भी मैं कहूंगी कि आप अपना कंट्रोल रखो, बात करनी है कुछ आवश्यक है करो, ऐसे बिल्कुल अपने को इतना यू नो बंधन में भी नहीं डालो, नहीं नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं, चुप चुप ऐसे भी, वो भी जो स्ट्रिक्ट एफर्ट है ना फोर्स्ड एफर्ट वो भी अच्छा नहीं है। हाँ मन का मौन, बट जो कारोबार है वो बस शांति से करो ना, धीरे बोल के करो ना, और मंथन करो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मजा लो वो समय का मजा लो। लास्ट ईयर एक्चुअली मैं क्या करती थी, चाय बना के मैंने अपने एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने अपने को कहा कि ओके एक अच्छा कप चाय बनाऊंगी फिर वो बैठ के योग में पीऊंगी मतलब बाबा के साथ आई हैव अ मीटिंग विद बाबा एंड आई ड्रिंक द टी स्लोली इन बाबाज रिमेम्बरेंस। तो एक रीति से वो योग भी हो गया, एक रीति से बहुत अच्छा बहुत अच्छी फीलिंग आ गई और ऐसे लगा कि बस थोड़ा स्लो डाउन हो गए, ऐसे नहीं लगता है कि हम भागते हैं वो थक जाते हैं, ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। तो ऐसे भी आप कुछ अपने लिए कुछ ऐसे रॉन्डेवू मीटिंग कुछ ऐसे आप क्रिएट करो ना, शायद आपके घर में आपके गार्डन में कुछ ऐसी जगह है तो आप कहो चलो मैं और बाबा वहां जाके बैठते हैं और बातचीत करते हैं, अपने को देखते हैं और मजा लो उस घड़ी का मजा लो। क्या है कि हमको नई 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 प्रकार से हमको पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि बहुत वैसे भी बहुत लंबा समय तो हो गया ना मेरे को तो लगभग 50 साल हो गया ना, तो कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, न्यूनेस चाहिए. तो न्यूनेस हमारी थिंकिंग में है, थिंकिंग से आएंगी न्यूनेस. नवीनता हमारे संकल्प शक्ति से. ओके, फिर दिन में तो ये भी अच्छा है. दादी गुलजार का पॉइंट, दादी गुलजार ने कहा है ना कि जब भी पानी पियो या चाय दूध कुछ भी पियो, तभी उस समय भी एक दो मिनट बाबा की याद में बैठो. क्योंकि हमको वापस घर जाना है ना, यहाँ हम काम काज कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं? वी हैव टू टच बेस. जैसे कोई घर से बाहर जाता है तो घर वालों से बात करते हैं ना, मैं अभी यहाँ हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, इतने बजे आऊंगी, मेरा इंतजार नहीं करना, इतने बजे खाऊंगी. इन टच रहते हैं ना, तो हम भी बाबा के साथ इन टच रहते हैं. बाबा को बताना है ना, बाबा मैं अभी यहाँ जा रही हूँ, बाबा अभी मैं ये कर रही हूँ. So ye bhi, it's like going inside, telling Baba. Aur main kahungi ke jo baatein hai na, jitna ho sake, kyunki kahaniyan to bahut hai. Har cheez ke piche, har kuch sthiti paristhiti ke piche, kuch na kuch kahani to hai. इसने ये किया नहीं किया, लाया नहीं लाया, कुछ भी, मतलब आपको शॉर्ट में कहानी सुननी है बस, और औरों को भी सिखाना है, बस शॉर्ट में सुना दो प्रॉब्लम क्या है. पता है जब मैं जयंती बहन और दादी से ये कारोबार करती थी, इतने लंबे चौड़े पत्र आते थे, A4 पेज नोट, ये छोटा छोटा फैक्सेस, 10-10 पेज का फैक्सेस आते थे, लिखत, हैंड लिखत. ये हुआ, फिर उसने ये कहा, और फिर हम यहाँ गए. और फिर बाबा भी कहने लगे ना कि बस ओके. बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि बाबा को पता है ना कि बिचारी दादी माँ बैठ के क्या होता था कि हमारे पास आते थे वो सब, तो हम फाइल बना के, रात को फाइल बना के ले आते थे बाबा भवन. फिर अमृत वेले के बाद दादी अमृत वेला करके सिटिंग रूम में आती थी, फिर वहां दादी को चाय दिया जाता था और मैं दादी के लिए फाइल रखती थी. तो 4:45 से 6:45 तक दादी सब वो पढ़ती थी, फिर जवाब देती थी. तो मैं जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाती थी और फिर दादी कहती थी इसको ये लिखो, इसको ये लिखो, इसको ये जवाब दो. लेकिन धीरे धीरे सब सीखने लगे कि दादियों के पास भी टाइम नहीं, और हमको शॉर्ट में लिखना है, और बात को बड़ी नहीं करना है. पहाड़ को राय बनाना है. तो इसमें भी टाइम वेस्ट होता है ना, बड़ों का भी हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये भी हमारे पर बहुत चढ़ता है. तो यस, जितना हो सके डिटैच्ड. हमको नहीं जानना है. कई बार तो मैं जाती नहीं उस तरफ, किचन की तरफ, या वो सब है बाहर वहां, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ कहानी सुनाएंगे जो जरूरी नहीं है. मेरे को नहीं जानना है सचमुच, मेरे को उसमें बुद्धि नहीं लगानी है. आपस में रिजोल्व कर ले तो अच्छा है, नहीं तो ऐसी बात है तो जरूर आएंगे ना, आएंगे ना, मेरे को ढूंढने आएंगे. मैं क्यों जाओ वो बात ढूंढने. तो इससे सचमुच बुद्धि की बचत होती है, क्योंकि जितना हम भरते हैं ना, तो फिर जब योग में बैठते तो क्या आता है? वही बात जो सुनी है, वही बात. पहले तो उसको क्लियर करना है ना, उसको हटाना है, फिर योग लगता है. कोई ऐसा इतना परफेक्ट नहीं बन गया कि बैठ गया और तुरंत कनेक्शन. वी हैव टू बी ऑनेस्ट. बैठो क्लियर, हटाओ फुल स्टॉप सब कुछ डिटैच और फिर योग लगाओ. और मेरी मम्मी है वो हमेशा, क्योंकि हम पांच बहने हैं, पांच कुमारी है घर में और दो भाई, तो मैं और दूसरी दो बड़ी बहन हम सब समर्पित है, लेकिन बाकी दो बहन और दो भाई की शादी हुई है. तो जब हम छोटे थे तो मम्मी हमेशा कहती थी, क्योंकि कुमारी है ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ शिक्षा देती थी कि क्योंकि ये तो जाने वाली है ना, अपने घर जाने वाली है. तो मम्मी हमेशा कहती थी, एक चुप सो सुख. फिर जब मेरी बहन की शादी हुई, मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, तो वो हमेशा जब आती थी वापस तो सब कहानियां सुनाती थी, ये हुआ ये हुआ ये किया वो सब, जो मतलब जो बातें होती है ना. तो मम्मी क्या कहती, मम्मी कहती थी, चुप हो जाओ बस, जितना हो सके आप करो, बाकी बोलो नहीं, ये बात को बढ़ाओ नहीं. तो सेंटर में जब हम आए तो वो भी बात हमको लागू पड़ती है ना, हमारी भी शादी हुई ना बाबा के साथ तो सेंटर भी, सेंटर में भी कितनों के साथ हम रहते हैं. जैसे बाबा ने अभी कहा ना, हम तो बाबा के साथ, मतलब बाबा को कंपेनियन बनाने के लिए आए, ये संगठन के साथ रहने के लिए नहीं आए. लेकिन बाबा शक्ति देते हैं, बट इसके लिए हमको पहले, हमको पहला कदम उठाना होगा. नहीं तो बाबा को तो सबको शक्ति देनी होगी ना. तो बाबा के साथ पहले जितना हो सके दिन में कनेक्ट करते रहो, और फिर रात्रि को, चलो लिखत में ना करो लेकिन मन से योग में बैठ के, वो जो दिन है ना वो फिनिश कर दो, कंप्लीट मतलब खत्म कर दो. कुछ बात ऐसी ना होए जो हम दूसरे दिन लेके चले. हमारे घर में भी हमको पता है, सबको पता है कि कुछ बात हुई, समझो मेरे से भी कुछ गलती हुई तो मैं क्लियर कर दूंगी, माफी मांग लूंगी, मेरे को दूसरे दिन तक नहीं चलानी है वो बात, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं है. क्योंकि क्या है, हम वो बात लेके हम सोते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है, और सबकॉन्शियस फिर कॉन्शियस को इफेक्ट करता है. तो बाबा तो कहते हैं ना सबकॉन्शियस, या तो कई बार हम ये भी शब्द यूज करते हैं ना चित, हमको चित साफ करना है. तो हमारे चित में वो बात चली गई तो कितनी गहरी चली गई ना, तो कितना समय लगेगा वो निकालने के लिए. तो इसलिए वहां जाने ही नहीं दो, कुछ बात इतनी लगे ही नहीं कि हम हमारे चित में चली जाए. प्रिवेंशन, हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन करो कि हम किसी बात से दुख नहीं लेना है, और कोई इतने खराब नहीं है, कोई ऐसे कोई साजिश नहीं कर रहे आपके खिलाफ, नहीं, आप बस आप कमजोर हो गए, आपने दुख ले लिया, आपको इफेक्ट आया. तो अपनी, जैसे मैंने कहा ना, अपनी जो जिम्मेवारी है 50% वो आप स्वीकार करो कि शायद ये मेरा हिसाब किताब है, शायद चलो मेरे से भूल हो गई, तो परिवर्तन आएगा. लेकिन हम दूसरे को ही दोषी बनाते रहेंगे तो नहीं आगे बढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे. और ये हम भी चेक करें कि कोई बात शॉर्ट में सुना सकते हैं, बता सकते हैं, या अभी बोलना जरूरी है क्या? वो भी देखना पड़ता है ना कि ये व्यक्ति अभी सुन सकता है कि नहीं, ये सही समय है कि नहीं। तो ये पूरा मतलब थोड़ा ज्यादा टेंशन चाहिए दिन में। हम बाहर मुखी होंगे ना तो वो सब अटेंशन नहीं रहेगा, अटेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि वहां हमारी बुद्धि है ही नहीं, हमारी तो बुद्धि वहां है कहां और। लेकिन हमारे पे अटेंशन होगा ना, जैसे वो कहानी है ना किंग जनक की, जो आया वो एक व्यक्ति आया और पूछता है आपका आपका कारोबार कैसे चलता है यहाँ। सब कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे राजा हो, सब बहुत खुश है आपसे। तो राजा जनक ने कहा ये ले लो, ये दीपक लेके जाओ और देखो, लेकिन एक शर्त पर कि ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो वो तो चल पड़ा, फिर आखिर आए वापस। तो राजा ने पूछा तो कैसा रहा मेरा किंगडम कैसा रहा? तो उसने क्या बोला, मैंने तो देखा भी नहीं, क्योंकि हाँ दीपक को ही देखते रहा कि ये बुझ ना जाए। तो यही हमारा एग्जाम्पल है कि हम सभी का एग्जाम्पल है कि भले हम रहते हैं दुनिया में, बाहर रहते हैं, लेकिन ये जो दीपक है ना वो बुझना नहीं चाहिए। और दीपक बुझना माना हमारी खुशी चली जाती है, उमंग उत्साह चला जाता है, प्यार प्रेम यूनिटी सब कुछ चला जाता है। क्योंकि लाइट माना क्या, लाइट इज लव, लाइट इज पीस, लाइट इज शांति, isn't it? So yeah, we don't want to lose that. क्योंकि फिर वो चला गया तो क्या होता है, अंधियारा, और अंधेरे में हम भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं। इसलिए नहीं, जितना हो सके, और समय भी, अभी तो समय की भी पुकार है, समय भी कह रहा है कि अपने को चेक करो, अपने पे ध्यान रखो, बाकी बातों में नहीं जाओ। अभी ये दिसंबर की मुरलीज में कितनी बार बाबा ने कहा देह और देह के संबंधों को भूलो, कितनी बार कहा बाबा ने, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ फायदा ही नहीं है। फॉरगेट द बॉडी एंड बॉडीली रिलेशंस। कितना बाबा अभी भी अव्यक्त होने के बाद भी कितना हमको धक्के मार मार करके सिखा रहे, पुरुषार्थ करा रहे हैं कि जितना हो सके आत्म अभिमानी स्थिति अपनाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, घर जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए अपनी दुनिया में रहो, अपनी मस्ती में रहो, अपनी उमंग उत्साह में रहो, इसमें ही मजा है। तो मैं यहां स्टॉप करती हूं, किसी को कुछ प्रश्न है तो कुछ प्रश्न लेती हूं, फिर हम थोड़ा योग करके पूरा करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? सब अंतर्मुखी हो गए, आइए बात ही खत्म। किसका किसका लास्ट बात नहीं सुनी मैंने। या बिकॉज क्या है कि हम जब किसी समझो स्पिरिचुअल फैमिली की बात करते हैं, हम किसी का समय लेते तो हमने उससे वो समय लूट लिया ने, जो वो अपने लिए यूज कर सकता था, कर सकती थी, तो हमने इससे वो छीन लिया ना वो समय। या तो समझो दादी, दादी बैठ के औरों को साकाश दे सकती थी ना, जिनों को ज्यादा मतलब जरूरी है नहीं, लेकिन मैंने समय ले लिया मैंने समय ले लिया, माना दादी मेरे में बिजी हो गई, सो वो मेरी जिम्मेवारी है ना, समझ रहे हो। और फिर जो आपने कहा ना लौकिक की बातें, तो लौकिक की बातें तो मैं कहूंगी कि वो तो हमको कंट्रोल करना है, क्योंकि लौकिक वालों को नहीं पता है ना, लौकिक वालों को पता है ना कि समय कम है, हमको हमको अभी संपन्न बनना है, थोड़े समय में संपन्न बनना है, सो हमको वो टाइम मैनेज करना है। ऐसे नहीं कि वो आए बैठे रहे और मैं भी बैठी रहूं, नहीं, हमको कहना है, हमको अभी सोना है, हमको जल्दी उठना है, हमको कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस उसको 12 बजे तक बैठना है, उसको बैठने दो ना, बिकॉज देयर वैल्यू ऑफ टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। या तो हम कह सकते हैं हम दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन अभी हमको ये बंद करना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति उस समय आपके सामने क्यों है, कुछ तो हिसाब किताब है ना। तो ये भी आप क्यों ऐसे नहीं समझते हो कि ये अभी मौका है ये बदलने का, चुकतू करने का, ऐसे समझो ना। आपने क्या सीखा, उसको क्या सिखाना है, मतलब ऐसे वैसे तो कुछ सिखा नहीं सकते, बट समझो उस समय हम शुभ भावना देवे, हम वो प्रैक्टिस करें। क्या कह रहे हो आप, आपने कुछ और पूछा? या और सचमुच अपने को देखना होगा कि ये व्यक्ति मेरे से दुख क्यों ले रहे, मैं क्या कर रही हूं कि वो उससे दुख ले रहे, शायद मेरे को भी नहीं पता है। सो देन आस्क, पूछो ना कि क्या हो रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। बताएंगे, शायद बताएंगे, शायद नहीं बताएंगे, बट आपने वो मौका तो दिया ना, मतलब अपनी तरफ से ओपन हो, क्लियर हो, क्लीन हो, और आप कहो मेरा दुख देने का कुछ ऐसा भाव नहीं है, पता नहीं आप क्यों दुख ले रहे हो, बट जस्ट क्लियर योर हार्ट। इतना तो हम कर सकते हैं ना, हमारा दिल साफ रखे, मन साफ रखे, फिर बाकी वो जो दुख ले रहा है देन यस इट्स देयर प्रॉब्लम। या इसलिए बाबा कहते हैं 5% मार्जिन 95 को खुश कर सकते हैं, लेकिन 5% आपको माफ है। Anybody else? Yeah, nice. नहीं, क्या है कि हमको एग्जाम्पल बनना होगा ना, वो बच्चे कहां से सीखेंगे, हमसे ही सीखेंगे ना। नहीं, ये बात क्या है, ये थोड़ी या युक्ति से हमको बात लेनी होगी, जो मतलब कि सिखाना भी है बट सिखाना भी नहीं है ऐसे मतलब। और मैं एक कुवैत की माता का एग्जाम्पल देती हूँ, तो उसका बेटा है, तो उसको भी हमने देखा बड़े होते, अभी वो 23 साल का है, और अभी वो समर में गई थी उसको मिलने, अमेरिका में है, स्टडी कर रहा है, तो फिर वो आई तो बता रही थी कि 2 दिन उसके बच्चे ने उसका माथा खाया, और हमेशा यही आर्ग्यूमेंट, ब्रह्मा कुमारी की आर्ग्यूमेंट कि हु इज दिस ब्रह्मा, हु इज दिस शिव बाबा, यू नो ये आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये माता ने क्या किया इस बारी उसने कहा, बाबा मेरे पास आंसर्स नहीं है, अभी आप आके उसको समझाओ, आपको जो मेरे मुंह से बुलवाना है आप बुलाओ। एंड देन वो शांत रही, क्योंकि वो भी कह रही थी इतनी वो स्ट्रेस्ड होती क्योंकि उसको भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन वो इतना प्रवोक कर रहा है उसको। लेकिन कहती है कि इस बारी मैंने सचमुच में बाबा को ले आई, मैंने बाबा को बिठाया, मैंने कहा बाबा आप ही इसका हल निकाल सकते हो, आप ही उसको समझाओ। तो वो समझ तो नहीं पाया लेकिन वो शांत तो हो गया, मतलब वो समझा तो नहीं लेकिन शांत तो हो गया। सो व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज आप भी सी मेन थिंग इज बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपको भी टेस्ट कर रहे हैं, आपको हिलाना चाहते हैं कि आप कहां तक मतलब शक्तिशाली हो, आपके पास कहां तक सहन शक्ति है। दे आर ऑल्सो टेस्टिंग दिस। तो आपको काम रहते हुए, दिस इज योर मेन प्रायोरिटी, बी काम, बी पीसफुल, शांत रहो। और क्या है, ये बात नहीं बढ़ेंगी फिर, भले वो समझ नहीं रहे हैं लेकिन गुस्से में नहीं आ जाएंगे। तो आपने इतना तो वो मैनेज किया ना फिर, एंड देन धीरे 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 दे विल स्टॉप, आई एम टेलिंग यू दे विल स्टॉप आर्ग्यूइंग विद यू बिकॉज आपका आपसे कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहा है ना। बट फर्स्ट इट्स अस, वी हैव टू हैव दिस इनर कैपेसिटी ऑफ काम, अंदर की जो शांति की शक्ति है वो हमको बढ़ानी है। यूटिलाइज या फर्स्ट अक्यूमुलेट एंड देन यूटिलाइज। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं कि हम दे नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास नहीं है। हम प्यार क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि प्यार नहीं है ना, इनफ नहीं है ना, काफी नहीं है ना। सहन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। हम खुश क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि खुशी नहीं है ना। प्यार नहीं कर सकते क्योंकि काफी प्यार नहीं है ना। तो क्यों नहीं है? और कहां से आएगा, कहां से मिलेगा? बाबा से मिलेगा ना। तो इसलिए योग से ही हमारे खजाने बढ़ते हैं, और जितना योग लगाएंगे वो खजाना बढ़ेगा। और फिर जो व्यक्ति सामने आएंगे उसको जो चाहिए हम दे सकेंगे। उस समय हम नहीं कहेंगे नहीं नहीं गो अवे, नहीं मेरे पास अभी सहन शक्ति नहीं, आप चले जाओ, ऐसे नहीं कहेंगे हम। डू यू सी, वी विल हैव इनफ टू गिव। बट ऑफकोर्स बच्चे जो है, परिवार है, उनों के साथ तो हमारा हिसाब किताब है ना, तो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए उसमें, क्योंकि उनों को तो फिर से देखना है ना, शाम को देखना है, कल देखना है, दोपहर को देखना है, बाकी लोग तो बस हम टाटा करके चले जाते हैं। सो यू हैव टू पे अटेंशन। या और कुछ? योग में बैठे तो मैं छोटी कमेंट्री करती हूं। तो पहले हम एक स्वमान उठाते हैं। तो चलो ये स्वमान उठाते हैं कि बाबा मेरा कंपेनियन है, मैं सर्वशक्तिवान के साथ बैठी हूं, सच मुझे फील करो यहां इस हॉल में। पहले तो हम यहां फील करें इस हॉल में कि मैं बाबा के साथ बैठी हूं। बाबा को आगे बिठाओ, बाजू में बिठाओ, कहां भी, बट ऐसे फील करो कि बाबा संजय भाई, कैन वी जस्ट हैव म्यूजिक, नो वर्ड्स। तो पहले ये फील करो कि बाबा मेरे साथ बैठा है। और बाबा की शक्ति का अनुभव करो, बाबा की किरणें का अनुभव करो। एक एक किरणें यह आत्मा को मजबूत बना रही है। ये महसूस हो रहा है कि हम पूरे सुरक्षित हैं बाबा के किरणों में, किरणों के नीचे। कुछ भी बात हमको हिला नहीं सकती है। बाबा भी हमारे में शक्ति भर रहे हैं। फिर बाबा हमको धीरे धीरे ऊपर इस दुनिया से पार ले जा रहे हैं। मैं और बाबा बस फिर हम आते हैं सूक्ष्म वतन में। एब्सोल्यूट साइलेंस, बिल्कुल शांति ही शांति। यहां हम बैठ के अपनी आत्मा को आईने में देखेंगे। हमारा सूक्ष्म शरीर हमको इशारा दे रहा है कि और सूक्ष्मता की ओर जाना है। इस इतनी संतुष्टता। आंतरिक शांति। और अभी हम बैठ के बाप दादा से दृष्टि लेते हैं। बाबा को कहते हैं कि जो भी कमी है वो बाबा पूरी कर देवे। और शक्ति भर देवे। अब फील करो बाबा की दृष्टि, बाप दादा की दृष्टि, जैसे कि एक लेजर लाइट है जिससे आत्मा पे ऑपरेशन हो रहा है। इसके लिए हमको बस स्थिर बैठना है, शांति से बैठना है, एक संकल्प नहीं हिलाना है। फील करो कि बस मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। बाबा तो चाहते हैं कि बाबा के हर एक बच्चा राजा बच्चा बन जाए। तो हम भी स्वीकार करते हैं, यस बाबा, मैं वो ही राजा बच्चा हूं। स्वीकार कर लो, दिल से स्वीकार कर लो। तो जैसे बाबा ने कहा लक्ष्य, तो लक्षण आ जाएंगे। ओम शांति।